समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कहते हैं जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसीलिए इसे यूं ही बर्बाद ना करें, खुलकर और बेफिक्री से जिए। ये गीत आज के युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए काफी है। के द्वारा गाया ये गीत आज हम एक बार फिर गुनगुना रहे हैं, जिसके बोल लिखे हैं संदीप श्रीवास्तव ने। लाखों युवाओं के दिलों में जोश भरने के लिए के की आज पुण्यतिथि है, आज इन पर भी हम बात करेंगे। आज सुबह की शुरुआत जीवन जीने की सलाह देने से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी है और ये दिन आप सभी को तंबाकू से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए भी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और आगे हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। मैं हूँ फरहत नाज आपके साथ, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और अभिनंदन। और आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी शगुन। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरत। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, वी आर पम्प्ड टू बिगिन आवर प्रोग्राम टुडे। वी आर बिगिनिंग द प्रोग्राम फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ एम्पावरमेंट, विद जॉय, विद एनर्जेटिक एटीट्यूड, एज फरत राइटली मेंशन इन द बिगिनिंग। वेल, द एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेस, and we are thrilled and very excited. I think that sets the tone right to begin our program.
शगुन, जुनून जो है किसी भी चीज के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें और उस जुनून के साथ काम करें तो यकीनन जो आपका जो सपना है, जो आप करना चाहते हैं, वो पूरा होता है। और आज के युवाओं में जोश भरने के लिए जो है मुझे लगता है इस तरह के जो गीत हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं, ताकि आप खुल कर जी सकें और अपने हिसाब से काम कर सकें।
Yes, rightly mentioned, Farhat, there. It definitely fills up the youngsters, you know, with the new energy, the passion, you know, to be drive towards their goals and definitely move towards their goals with strength and power.
Bilkul.
And with this, let me also brief listeners you about the program. We'll begin with the latest in national and international news first. We'll also be providing you Metro City updates and some historical information which is related to today, that is 31st of May 2025. And our ending section, the last segment of our program, will have lots of attributes at the end. But first, let's get started with the headlines.
जी शगुन, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यात्रा से कर लेते हैं। श्री मोदी राज्य में माता देवी अहिल्या भाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर लोकमाता देवी अहिल्या भाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी दतिया और सतना हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे।
दो नए एयरपोर्ट दतिया और सतना अहिल्या महारानी की नगरी में उसका लोकार्पण होगा। उज्जैन सिंहस्थ आने वाला 2028 में, वहां 29 किलोमीटर के नए घाट का निर्माण होगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जल संसाधन विभाग के करीब 863 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। श्री मोदी 1271 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण के लिए पहली किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर माता देवी अहिल्या बाई को समर्पित डाक टिकट और 300 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
सेंटर हैज आस्क्ड इंडिगो टू एंड इट्स एयरक्राफ्ट लीज अग्रीमेंट विद टर्किश एयरलाइंस विद इन 3 months. The action comes just weeks after the government revoked the security clearance for a Turkey-linked firm. Chalabi Aviation, which handles services at 9 key airports in India, including Delhi. Indigo, which has leased and operates 2 Boeing 777s from Turkish Airlines, had a permit to do so until May 31 and had sought an extension from the Ministry of Civil Aviation for 6 months. The ministry has refused to allow this. A statement from the ministry, however, said that to avoid passenger inconvenience due to immediate flight disruption, Indigo has been granted a 3-month extension till August 31. The ministry made it clear that this will not be extended further.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने उद्योग और विनिर्माण गतिविधि की सराहना करते हुए कहा है कि देश ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.4% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% होगी। वे कल नई दिल्ली में लक्ष्मी पंत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार समारोह 2025 को संबोधित कर रही थी।
The center has reduced the basic custom duty on crude palm oil, crude soybean oil and crude sunflower oil to 10%. The move is aimed at bringing down the retail prices of cooking oils and protecting domestic processors. A notification in this regard was issued by the finance ministry yesterday with immediate effect. Punjab is conducting second mock drill under Operation Shield today. Special Director General of Police, Home Guards, Sanjeev Kalra, who is also the Director, Civil Defence, has issued the orders in this regard following the guidelines of the Ministry of Home Affairs. Our correspondent has filed this report.
This is a precautionary mock drill. There's nothing to panic but to follow the instructions and stay away from fake news. It will be conducted in all the districts of the border state of Punjab to augment the civil defense preparedness against any hostile attack. All concerned security agencies, fire brigades, civil defense volunteers are participating in it. All the deputy commissioners of the districts have issued public instructions about the drill. The Hooters cautioning airstrike will be sounded during the given timings with complete blackout for that duration. And public has to follow the same practice drill as it did on May 7th and later. All lights, including those on inverters or generators, have to be switched off. Those traveling by motor vehicles on road are also requested to switch off their lights. Emergency telephone numbers have also been issued for public assistance. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
शगुन में ही गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा और बनासकांठा समेत कई जिलों में आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और इसका उद्देश्य सुरक्षा खतरों के मद्देनजर सिविल डिफेंस की आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाना और मौजूदा सिविल डिफेंस तंत्र का परीक्षण करना भी है। और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम में एक महीने के प्रदर्शन के बाद 2 जून को भारत लौटेंगे। स्वदेश लौटने पर इन अवशेषों का नई दिल्ली के पालम वायुसेना स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के अधिकारी और वरिष्ठ भारतीय भिक्षु औपचारिक स्वागत करेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद इन अवशेषों को 3 जून को राष्ट्रीय संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। 4 जून को अवशेष राष्ट्रीय राजधानी से वाराणसी होते हुए सारनाथ ले जाया जाएगा।
वेल, वी आर नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। In IPL cricket, Mumbai Indians, they storm into qualifier 2 with a thrilling 20-run victory over Gujarat Titans. We have a report.
In IPL cricket, Mumbai Indians secured their spot in qualifier 2 by defeating Gujarat Titans by 20 runs in eliminator clash at the Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium in Chandigarh last night. Chasing 229, Gujarat Titans managed 208 for 6, falling 20 runs short of the target. With this victory, the Mumbai Indians advanced to qualifier 2, keeping their hopes alive for a record-extending 7th IPL title. In Asian Athletics Championships, India enjoyed a stellar day as Gulveer Singh bagged his second goal, leading the country's medal charge. Gulveer clinched the men's 5,000 meters title in a championship record time, surpassing the previous mark set in 2015. India held on to second place in the medal tally with 18 medals, including 8 gold, 7 silver and 3 bronze. This is Ritu Srivastava from Sports Desk.
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाक युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था।
जनवरी 1923 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा फरवरी 1942 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। मेजर शर्मा ने अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने घाटी की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। हाथ में प्लास्टर लगे होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं की डी कंपनी का नेतृत्व करने पर अड़े रहे, जिसे 31 अक्टूबर को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया। 3 नवंबर को उनकी कंपनी को बडगाम के पास एक पोजीशन संभालने का काम सौंपा गया, जबकि दो अन्य कंपनियां बेस पर लौट आईं। उस दिन दोपहर में लगभग 2:30 बजे उनकी टुकड़ी पर छोटे हथियारों, मोर्टार और भारी ऑटोमेटिक हथियारों से दुश्मन के लगभग 700 सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले से भारतीयों को काफी नुकसान हुआ। दुश्मन के इस घातक हमले के बावजूद अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए मेजर शर्मा अपने जवानों को डटे रहने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। घटते गोला बारूद और बढ़ रहे नुकसान के बावजूद उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व करना जारी रखा। अपने एक हाथ में प्लास्टर बंधे होने की स्थिति में भी उन्होंने लगातार मैगजीन भरना और लाइट मशीन गन चलाना जारी रखा। मेजर शर्मा जब दुश्मनों से लड़ रहे थे तभी उनके पास रखे गोला बारूद पर मोर्टार का एक गोला फट गया। इस हमले में युवा मेजर सोमनाथ शर्मा का करियर समाप्त हो गया, जिन्होंने अभी अपने जीवन के 25 साल भी पूरे नहीं किए। ब्रिगेड मुख्यालय को दिए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने कहा कि मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी आदमी और आखिरी राउंड तक लड़ूंगा। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके शानदार नेतृत्व और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और श्रोताओं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुक कर लेते हैं महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले शगुन, क्या है आपके पास चेन्नई में?
यस, बिगिनिंग विद चेन्नई फरत। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन प्लान्स टू प्रोक्योर मैकेनाइज्ड व्हीलचेयर्स फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एज पार्ट ऑफ द ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव एट मरीना बीच। दीज व्हीलचेयर्स आर स्पेशली डिजाइन्ड टू मूव विद ईज ऑन सैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू मोर चिल्ड्रंस प्ले एरियाज विल सून बी एडेड अंडर द इनिशिएटिव। The Commissioner, J. Kumara Gurubaran, said that the mechanized wheelchairs can move on sand and would be a welcome addition, especially for children who have never had the chance to visit the beach. The civic body first plans to purchase 2 beach wheelchairs at an estimated 1.15 lakh each. More wheelchairs would be procured as the number of beachgoers grows in the future.
और अब दिल्ली की खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कल राजधानी के सीबीएसई के कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 87 छात्रों को टैबलेट प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 100% परिणाम लाने वाले विद्यालयों को भी पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने निर्देश जारी किया है कि ऊंची इमारतों पर साल भर एंटी स्मॉग गन की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला राजधानी के प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक लंबे समय से अनदेखे प्रदूषण स्रोत पर कठोर कदम उठाए हैं, जो जवाबदेही और पारदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है।
Yes, focusing now on Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will inaugurate the 5th edition of the Women of Worth program in Bengaluru on June 4th. The former Chief Secretary of the State and the President of Ubuntu Women Network, K. Ratnaprabha, informed media persons today that Union Minister of State for Micro, Small and Medium Enterprises and Labour and Employment, Shobha Karandalaje, will inaugurate an exhibition to coincide with the event. The event will be attended by 300 delegates and around 100 exhibitors will display their products and details of their activities. Ubuntu is a body for women entrepreneurs, especially from small towns. It is an umbrella for 57 associations across 12 states. It supports over 30,000 women entrepreneurs nationwide. Over to you, Farhat, for the next
update. जी शगुन, महाराष्ट्र में कोविड के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। 84 नए मामले वहां पर सामने आए हैं। इनमें मुंबई से 32, पिंपरी चिंचवाड़ से 19 और थाने से 14 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या अब 467 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोविड के लिए परीक्षण किए गए मरीजों में हल्के लक्षण पाए गए हैं और राज्य में पर्याप्त जांच और उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं महाराष्ट्र में पशुपालन मंत्री पंकज मुंडे ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र का पशुपालन विभाग आज लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती मनाने के लिए पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस अवसर पर विभाग विभिन्न पहल करेगा, जिसमें कार्यालयों और पशु चिकित्सालयों में परिसर सौंदर्यीकरण अभियान, गांव स्तर पर स्वास्थ्य शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण अभियान और जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। और जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता के पास।
लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर वॉज बॉर्न ऑन 31st May 1725 इन द विलेज ऑफ चौंडी इन अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। शी मॅरिड खंडेराव, द सन ऑफ द ब्रेव मराठा लीडर मल्हारराव होळकर। सॅडली खंडेराव डाईड हिरोईकली इन बॅटल। After his death, Ahillyabai chose to dedicate her life to the welfare of the people. She became a beacon of exemplary governance, laying the foundation for a fair, kind and compassionate administration. Ahillyabai implemented progressive policies for the betterment of various sections of society, including women, farmers, artisans and tribals. Her work reached all over the country. For Akashvani News, this is Madhavi Kulkarni from Pune.
Well, now we are focusing on Hyderabad. The Telangana state government has finalized the list of over 2 lakh beneficiaries for sanctioning the Indirama houses, and construction of 24,000 houses had already begun. State Housing Minister P. Srinivas Reddy informed that about 100 houses were in the final stages of construction and ready for inauguration. Speaking to the media in Hyderabad yesterday, Indirama committees and the local MLA have prepared the lists of beneficiaries in each assembly constituency. The minister informed that of the total houses, over 9,000 will be given to change to tribals in the agency areas.
और स्वगुण बंगाल की अगर बात की जाए तो दक्षिण बंगाल के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है. उत्तरी बांग्लादेश और उससे सटे मेघालय में दबाव के कारण उत्तर बंगाल के उप हिमालयी जिलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. समुद्र की खराब स्थिति के कारण मछुआरों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तट से दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून इस सप्ताह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों के साथ साथ उत्तर पूर्व भारत में भी पहुंच गया है. श्रोताओं, अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने की. तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, तो आज बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा होने की संभावना है. न्यूनतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में मॉनसून की स्थिति बरकरार रहेगी क्योंकि कई जिले जो है भारी बारिश की चपेट में है. मौसम विभाग ने नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कोलकाता का हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है और न्यूनतम तापमान जो है रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
Now talking about Chennai, it is expected to have a generally cloudy sky with light rain here as well. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between minimum of 24 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और अब आइए मौसम के बाद इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं. जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो थोड़ा सा इसके इतिहास की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी. पहली बार 31 मई 1988 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और इसके बाद हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा. और शगुन तंबाकू से हर वर्ष दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है और सरकार इस पर बहुत ही गहराई से काम भी कर रही है और बकायदा नशा मुक्त भारत बनाने का जो अभियान है वो जारी जो है वो रखा हुआ है.
यस फरत, वर्ल्ड नो टोबैको डे इट इज बीइंग ऑब्जर्व टुडे टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ यूजिंग टोबैको. द डे इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO टू एंड द यूज ऑफ टोबैको. वी हैव अ डिटेल्ड रिपोर्ट.
According to WHO, an estimated 1.3 billion people consume tobacco worldwide, which is one of the leading causes of preventable death. India is also the second largest consumer and producer of tobacco. According to the Global Youth Tobacco Survey 2019, 8.5% of school students in the age group of 13 to 15 consume tobacco in different forms across the country. While No Tobacco Day was first observed in the year 1987 within name to draw global attention to the tobacco epidemic and the preventable death and disease it causes. The theme for this year is Unmasking the Appeal, Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products, which focuses on highlighting the hidden dangers of tobacco products that come in appealing flavors and packaging. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ और घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं. आज ही के दिन सन 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी. वहीं 1727 में फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए.
Now, in the year 1891, Buddhgaya Mahabodhi Society, an organization to encourage Buddhist studies in India and abroad, was established by a Buddhist monk, Anagarik Dharmapal.
और 1977 में आज ही के दिन भारतीय सेना के एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी।
Going a little back, in the year 1947, Gandhiji declared that peace must precede partition and he would not be party to India's vivisection.
और शगुन आपको पता है कि टैक्सी सेवा की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले कहां पर की गई थी?
Please tell us.
जी, सबसे पहले की गई थी 1907 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में.
Now, talking about the year 1981, first developmental launch of SLV-3 Rohini RSD-1 was placed in the orbit. It was used for conducting some remote sensing technology studies using a landmark sensor payload.
और अब आइए सबसे पहले याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को. सबसे पहले हम जिन्हें याद कर रहे हैं आज उनके उपलक्ष में कई जगह जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहिल्याबाई होलकर. साधारण से किसान के घर में पैदा हुई ये एक जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहाँ के लोगों के हित में कार्य किया. उनके कार्य की प्रणाली बहुत ही सुगम और सरल थी और इन्होंने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक और दया के साथ व्यवहार किया. अहिल्याबाई होलकर के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व भी किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी. वे मालवा प्रांत की महारानी थी. अहिल्याबाई होलकर ने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया. होलकर का इतिहास करीब 30 साल के अद्भुत शासनकाल के दौरान मराठा प्रांत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक छोटे से गांव इंदौर को एक समृद्ध और विकसित शहर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. और शगुन, इसके अलावा सड़कों की जो वहां पर जो दशा थी वो काफी दयनीय थी, उसको भी सुधारने का काम इन्होंने किया. शिक्षा जो है वो उन्होंने उस पर काम किया, काफी जोर से जो है वो महिलाओं के लिए हक में लड़ी कि उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया.
Well, yes, renowned for good governance, social welfare, also humanitarian work, along with educational and cultural advancements, Ahilyabai Holkar. Well, today, listeners, we are also remembering mathematician. He is Amiya Charan Banerjee. Well, he made notable contributions in the field of astrophysics and also galactic dynamics. He was also through a topper, and on completing his post-graduation in mathematics, he won a Bihar government scholarship to go to England. He became a Wrangler and Foundation Scholar from Clare College, Cambridge. On his return to the country, he went to Allahabad and started his teaching career as a professor.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1950 से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्मों के शीर्ष निर्देशकों, निर्माताओं और पटकथा लेखकों में से एक राज खोसला का. उन्हें देव आनंद जैसी अभिनेताओं की सफलता का श्रेय दिया जाता है. गुरुदत्त के अधीन अपना करियर शुरू करने के बाद इन्होंने CID, वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी मिला. उनका जन्म 31 मई 1925 को रोहान, पंजाब में हुआ. राज खोसला ने वहीदा रहमान, साधना, आशा पारेख, मुमताज और नूतन जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम किया और उन्हें खास पहचान दिलाई. महिला प्रधान फिल्मों के कारण राज को वुमेन डायरेक्टर भी कहा गया. तो आइए सुन लेते हैं उनकी फिल्मों से कुछ चुनिंदा गीत.
अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा.
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठ जीने का सहारा हो गया. आंखों ही आंखों में
अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना.
छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा,
रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता.
मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की.
Well, yes, Raj Khosla, that wonderful medley, it was very beautiful. Well, his birth centenary falls on May 31, and he was nothing less than an institution. His cinema was intentionally passionate, intensely passionate, often women-centric, with a narrative style dominated by pith rather than technique and usually boosted by exceptionally filmed classical songs as well. Well, today we are also remembering Walter Whitman, poet, essayist and journalist. He also wrote two novels. He is considered one of the most influential poets in world literature. He incorporated both realism and also transcendentalism in his writings and is often called the father of free verse.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया को. उन्होंने अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर के अभिनय से सजी फिल्म अजूबा का संगीत दिया. तमस, अंकुर, मंथन, मंडी, जुनून और कलयुग जैसी फिल्मों में भी वनराज भाटिया ने संगीत दिया. इसके अलावा वनराज भाटिया ने टीवी धारावाहिकों में से एक से बढ़कर एक संगीत दिए. 1976 में आई फिल्म मंथन हो या फिर फिल्म तमस का संगीत, तो आइए नजर एक डाल लेते हैं उनके संगीतों पर.
ना ददाति नो ददाति तदानीं नासीद् रजो नो व्योम.
Well, now let me talk about a musician regarded as one of the greatest and most influential drummers in history. I'm talking about John Henry Bonham. Today it's his birth anniversary. He was the drummer of rock band Led Zeppelin and noted for his speed, his power and fast single-footed kick drumming, distinctive sound and feel for groove. He played with multiple local bands, both at school and following school. He eventually started playing in two different bands with Robert Plant, and following the demise of Yardbirds, this was his first band. He joined Robert Plant, guitarist J.B. Page and bass guitarist John Paul to form Led Zeppelin. And I have picked a very famous song, a very legendary song from them. This is Stairway to Heaven.
And my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke.
और आज बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास की पुण्यतिथि है. हिंदी फिल्मों के गीत संगीत के स्वर्ण युग के सारथी अनिल बिस्वास रहे हैं. उन्होंने न सिर्फ अपने संगीत से फिल्म संगीत को शास्त्रीय कलात्मक और मधुर बनाया, बल्कि अनेक गायक गायिकाओं को तराश कर हीरे जवाहरत की तरह प्रस्तुत भी किया. अनिल बिस्वास शास्त्रीय संगीत के निष्णात होने के साथ साथ लोक संगीत के अच्छे जानकार भी थे.
और ये खुशी, ये पहे, ये दिल लगी, छिटकी हुई है चांदनी, हम और तुम और ये खुशी.
और अब बात कर लेते हैं जिनके गीत से शुरुआत हुई थी आज के कार्यक्रम की, प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके की. उन्हें उनके संक्षिप्त नाम केके से जाना जाता है और हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में प्रमुख गायक रहे. केके ने अपने दोस्तों के साथ एक रॉक बैंड का भी गठन किया. मशहूर गायक किशोर कुमार और संगीत निर्देशक आरडी प्रधान ने केके को बहुत प्रभावित भी किया.
Well, yes, KK has been mentioned and popularly known even as the mesmerizer for his, you know, for his voice, very versatile voice, we can say. And he went on to establish himself as one of the leading singers of the 2000s with successful songs in various languages, as Farhat also mentioned.
जी बिल्कुल शगुन. और उन्होंने बॉलीवुड में अपना कार्यकाल फिल्म माचिस के छोड़ आए हम वो गलिया से शुरू किया, तो आइए सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत.
तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों.
इसके अलावा फिल्म काइट में भी केके के गाने काफी लोकप्रिय हुए, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत.
जिंदगी दो पल की.
जी बिल्कुल, जिंदगी दो पल की है, तो इसको खुलकर जी लीजिए ताकि पता नहीं कल होना हो.
Well, rightly mentioned, Farhat.
जी बिल्कुल, और इसके साथ ही अब वक्त तो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
Well, yes, listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you so much, listeners, for tuning in.
Namaskar.